कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल के मैदान की गतिविधियों के बारे में भी देंगे जानकारी और आर्थिक जगत के उतार चढ़ाव पर भी रहेगी हमारी नजर और उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी हम करेंगे याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिवस। परिक्रमा के आज के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ हैं सायरा। सायरा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार आकर्षिता, नमस्कार आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हू हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ परिक्रमा। आकर्षिता हैज ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट टू लुक फॉरवर्ड टू इन टुडेज शो, तो ज्यादा वक्त ना गवाते हुए लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। आकर्षिता
जी,
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होल्ड्स बायलैटरल टॉक्स विद ऑस्ट्रियन चांसलर कार्ल निहामर इन वियना टुडे।
सात राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी।
सुप्रीम कोर्ट रूल्स मुस्लिम वुमेन कैन सीक मेंटेनेंस फ्रॉम हस्बैंड्स आफ्टर डिवोर्स।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक सड़क दुर्घटना में 18 की मौत और 19 घायल। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की।
एंड मैसिव लैंडस्लाइड इन चामोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, बद्रीनाथ नेशनल हाईवे क्लोजेस। And now it's time for Dateline India. And today, being the 10th of July, Agarshita, we celebrate National Fish Farmers Day every year. A very famous, you can say, quote is there that give a man a fish and you feed him for a day, but teach a man to fish and you feed him for a lifetime. Yes, we all know the importance of aquaculture and of course of fish farmers to our economy. So National Fish Farmers Day celebrated to honor them every year on 10th of July.
हर साल इसी दिन को भारत में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य देश में मछली किसानों, मछुआरों और मछली पालन से जुड़े अन्य हितधारकों के काम को सम्मान और समर्थन देना है। मछली उत्पादन के मामले में चीन के बाद भारत तीसरे स्थान पर है। मत्स्य पालन व जलीय कृषि के मामले में भारत की लगातार प्रगति के पीछे इस नीली क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान है। मछली पालन व जलीय कृषि स्वास्थ्य और समाज कल्याण को बढ़ावा देने के साथ साथ गरीबी उन्मूलन व खाद्य सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण सेक्टर है। मछली को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कारोबार करने वाली खाद्य वस्तुओं में से एक माना जाता है। ये ग्लोबल आबादी के पशु आधारित प्रोटीन सेवन का करीबन 17% के करीब योगदान है। 15 से 20 किलोग्राम सालाना प्रति व्यक्ति डिमांड तक पहुंचने के लिए 2050 तक लगभग 125 से 210 मिलियन टन के करीब मछली की जरूरत अनुमानित है। हाल के दशक में भारत अंतर्देशीय मत्स्य पालन में काफी तेजी से उभर रहा है। देश अंतर्देशीय मत्स्य पालन में मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। पहले यह भारतीय प्रभुत्व वाले समुद्र क्षेत्रों तक सीमित था, लेकिन अब अंतर्देशीय मत्स्य पालन के मामले में करीबन दोगुना बढ़ोतरी हुई है।
And yes, it was on this day in 2001 that the Indian government designated this day, that is 10th of July, as National Fish Farming Day. The purpose of the day was to express support for those involved in aquaculture, such as fishermen, fish farmers, fisheries experts and other stakeholders.
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने 2001 के पहली राष्ट्रीय मछली किसान दिवस समारोह का निरीक्षण किया। इस महत्वपूर्ण समारोह में मत्स्य पालन शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन ने भी भाग लिया।
And Akarshita, you've already told that India is the third largest fish producer state, and of course it has 8% share in global fish production. It was also the second largest aquaculture producer, the largest shrimp producer, and also the fourth largest seafood exporter in the world. And if we talk about the states, well, Andhra Pradesh remains the largest producer of fish and aquaculture from period 2015-16 to also 2022-23.
पौराणिक समय में मछली व अन्य जल उत्पादों की खेती होती रही है, लेकिन देश में मांग के अनुपात में पैदावार काफी कम था। इसके लिए आजादी के बाद से सरकार की ओर से प्रयास प्रारंभ किया गया। मत्स्य पालन क्षेत्र में काम कर रहे प्रोफेसर डॉ हीरालाल चौधरी व उनके सहयोगी डॉ केएच अली कुन्ही को इसकी जिम्मेदारी सरकार ने सौंपी। 10 जुलाई 1957 को हाइपोफिकेशन तकनीक से देश में मत्स्य उत्पादन का निर्णय लिया गया। इस तकनीक से मत्स्य प्रजनन के क्षेत्र में बड़ी क्रांति आई। ये क्रांति नीली क्रांति के नाम से जानी गई। नीली क्रांति के जनक प्रोफेसर डॉ हीरालाल चौधरी व उनके सहयोगी डॉ केएच अलीकुन्ही हैं। ये दिवस मछली उत्पादक किसान, इसके जुड़े एक्वाप्रेन्योर्स, व्यवसायी, वैज्ञानिक व अधिकारियों के योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है।
Yes, of course. The goal is to recognize the contributions made by fish farmers, the aquapreneurs or the people involved in business related to the aquaculture and fishermen to the development of the nation's fisheries industry, and also to raise awareness of the need to alter the way the nation manages its fisheries resources in order to ensure sustainable fisheries stocks and robust ecosystems.
मछली पालन या जलीय कृषि नियंत्रित वातावरण में मछली पालने की प्रथा है। ये समुद्री भोजन की वैश्विक मांग को पूरा करने, प्रोटीन और आवश्यक पोषक तत्वों का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अत्यधिक मछली पकड़ने और पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण जंगली मछली भंडार में काफी कमी का सामना करना पड़ रहा है, और बढ़ती वैश्विक आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जलीय कृषि एक स्थायी समाधान के रूप में उभरी है।
The nation's economy and general development are greatly influenced by the fisheries industry. The fisheries industry, sometimes known as the sunrise sector, is positioned to generate enormous potential through growth that is both equitable and inclusive. One of the key producing sectors with the quickest growth is fishing.
मत्स्य पालन क्षेत्र की अप्रयुक्त क्षमता, स्केलेबल व्यावसायिक समाधानों को लागू करने और मछुआरों और मछली उत्पादों के लिए लाभ बढ़ाने के लिए कई तरह की संभावनाएं प्रस्तुत करती हैं। मत्स्य पालन क्षेत्र की क्षमताओं को पूरी तरह से पूरा करने के लिए मछली पकड़ने के उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में उत्पादन, उत्पादकता और दक्षता बढ़ाने के लिए तकनीकी प्रगति आवश्यक है।
In the interim budget 2024-25, it was announced that PMMSY will further be stepped up to enhance aquaculture productivity from existing 3 to 5 tons per hectare, doubling exports to 1 lakh crore rupees and generating 55 lakh employment opportunities, along with big infrastructural changes of establishing 5 integrated aqua parks.
मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय 2020-21 से 2024-25 तक 5 साल की अवधि के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लागू कर रहा है। पीएमएमएसवाई के लक्ष्य और उद्देश्य मत्स्य पालन का दोहन, मछली उत्पादन को बढ़ावा देना, मूल्य श्रृंखला को आधुनिकीकरण करना और मजबूत करना, मछुआरों और मछली किसानों की आय को दोगुना करना, कृषि सकल घरेलू उत्पाद और निर्यात में योगदान बढ़ाना और मछुआरों और मछली किसानों के लिए सामाजिक, भौतिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। मछुआरों और मछली किसानों को अपेक्षित सेवाएं प्रदान करने के लिए पीएमएमएसवाई के तहत सागर मित्र के रूप में अच्छी तरह से संरचित विस्तार सहायता सेवाओं की परिकल्पना की गई है। तटीय मछुआरों गांव में 3,347 सागर मित्र बनाकर युवाओं को मत्स्य पालन विस्तार में लगाया जाएगा, और 2020-21 से मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने रुपए की कुल परियोजना लागत पर 2,494 सागर मित्रों को मंजूरी दी है।
The Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana inter alia also provides financial assistance for setting up of fish farmers producer organizations or FFPOs to economically empower the fishermen and enhance their bargaining power. The fishery sector in India has envisioned the enhancement of production and productivity, improving quality and increasing domestic fish consumption and export trade over the years. The Department of Fisheries, Animal Husbandry and Dairy acknowledge the untiring efforts of fish farmers and fishers across the country whose dedication and hard work have played a major role in the success of the Indian fisheries sector.
प्रौद्योगिकी मछली किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डिजिटल टूल और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करने से पानी की गुणवत्ता की निगरानी करने, भोजन को अनुकूलित करने और मछली के स्वास्थ्य को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद मिलती है। राष्ट्रीय मछली किसान दिवस समारोह उनके महत्वपूर्ण योगदान को पहचानने और हमारा आभार व्यक्त करने का एक अवसर है, जो मछली किसान हैं या जो लोग इससे इस व्यवसाय से संबंधित हैं और जिम्मेदार प्रथाओं को अपनाकर और मत्स्य पालन क्षेत्र की क्षमता का दोहन करके हम एक समृद्ध भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं, खाद्य सुरक्षा बढ़ा सकते हैं और राष्ट्र के समग्र विकास में योगदान कर सकते हैं। और श्रोताओं, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
यस, एब्सोल्युटली, नाउ इट्स टाइम टू बी ट्रू टू द स्पिरिट ऑफ आवर शो। निकलेंगे हम लोग देश की परिक्रमा करने, एंड इन आवर जर्नी ऑफ परिक्रमा फर्स्ट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट टू कोहिमा। नागालैंड इज अ ट्राइबल स्टेट विद रिच ट्रेडिशंस। इट इज फेसिंग अ डिक्लाइन इन इट्स ट्रेडिशनल हाउस बिल्डिंग प्रैक्टिसेस दो एंड डिस्पाइट द सेंचुरी लॉन्ग एवोल्यूशन। While traditional houses are a rarity in urban areas, this decline extends to rural regions as well, where traditional houses are fast disappearing. Having said this, Peshu village is one of the many villages under the frontier district of Noklak in Nagaland, situated near the Indo-Myanmar border, where a community continues to practice this old-age tradition of construction of slate houses. And we have more details by our correspondent.
The Peshu village is specially known for slate rooftop houses. The slate stones rooftop has been in practice since the settlement of the Peshu village and hitherto in practice despite the decline of these traditional housing practices. Mr. Pesing, a farmer and a practitioner of the extraction of stone slate roofing, shares more on it.
My name is Pesing. Let me share how the extraction of stone slate process were done by our forefathers and practiced till then. Well, our forefather started the process of extraction of stone slate by putting up local egg and raw bull fat at the extraction site. With the chanting of prayer, like my heart and like my liver, let the stone slate be extracted. But with the coming of Christianity, the worship and chanting has stopped and replaced with simple prayer towards the Almighty God.
Comparing to the modern CGI sheet, the stone slate roof is more sustainable and durable. According to the local sources, some of the stone slate in the village dated more than 200 years old. The stone slate rooftop provides much cooler temperature compared to modern CGI sheet and also acts as a soundproof during rainy season. With the advent of the modern means of construction, the stone slate rooftop is diminishing at a very fast pace. Only handful of stone slate rooftop houses exist today. Owing to the laborious nature of work, extraction of stone slate are substituted by modern materials which are easily available in the market. Interestingly, the stone slate roofing can be found at the morongs of the Kamyungan tribe at the Hornbill Festival site in Naga Heritage Village, Kisama. So for any tourists who happen to visit Nagaland, do not forget to check out this intricate style of roofing at Kisama. For Parikrama, with Amshu Asonyo from Kohima.
Very interesting story from Kohima. And Akarshita, ab is safar mein hum log agle padhav kya hai?
जी, अब चलते हैं राजस्थान की ओर। वहीं राजस्थान में चयनित आकांक्षी जिलों और आशान्वित ब्लॉक्स में विकास की गति तेज करने के लिए संपूर्णता अभियान चलाया जा रहा है। 30 सितंबर तक चलाए जाने वाले इस अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, मृदा और सामाजिक विकास के 6 सूचकांकों का 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।
प्रदेश के 5 आकांक्षी जिलों और 27 ब्लॉक में चलाए जा रहे इस अभियान के अंतर्गत विकास की दौड़ में कुछ पीछे रह गए इलाकों की जनता को मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। नीति आयोग की इस पहल के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं और अलग अलग विभागों की स्टॉल्स लगाकर लघु फिल्मों का प्रदर्शन कर आमजन को सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहित की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा राजीविका से जुड़े स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनियां लगाकर महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। परिक्रमा के लिए जयपुर से सुदर्शन नाहर की रिपोर्ट।
वहीं मध्य प्रदेश में पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय संचालनालय द्वारा राज्य संग्रहालय में मध्य प्रदेश की गोंडकालीन रियासतों से संबंधित स्मारकों की छायाचित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। पेश है हमारे भोपाल संवाददाता की ये रिपोर्ट।
इस प्रदर्शनी के जरिए आम लोगों और गोंड इतिहास पर शोधकर्ताओं को गोंडकालीन राजनीतिक घटनाओं, प्रशासनिक निर्णयों तथा अन्य विषयों से संबंधित ऐतिहासिक दस्तावेज देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही गोंडकालीन रियासतों के शासकों के छायाचित्र, मानचित्र, प्रतीक चिन्ह एवं वंशावली भी यहां प्रदर्शित की गई है। भारत के मध्यकालीन इतिहास में गोंड शासकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। गणेश नृप वर्णन, अकबरनामा, 1667 ईस्वी के रामनगर शिलालेख तथा संग्राम साह के सिक्कों से इस राजवंश के संबंध में जानकारी मिलती है। इस राजवंश के प्रथम शासक यादव राय या जादव राय थे। इसके बाद खरजी, गोरक्षदास, सुखनदास एवं अर्जुनदास इस राजवंश के अन्य शासक हुए। अर्जुनदास के पुत्र अमानदास, जो बाद में संग्राम साह के नाम से गोंड रियासत के अधिपति बने, उन्हें इस राजवंश के सबसे प्रतापी राजाओं में गिना जाता है। दिल्ली के लोधी सुल्तान एवं गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के समकालीन होने के कारण संग्राम शाह की मध्यकालीन इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गणेश नृप वर्णन के अनुसार संग्राम शाह के क्षेत्राधिकार में 52 गढ़ थे। गढ़ यानी किले, जो भोपाल से लेकर पन्ना तक और छिंदवाड़ा से लेकर बैतूल तक फैले थे। रानी दुर्गावती के समय में भी ये किले उनके आधिपत्य में बने रहे। रानी दुर्गावती इस वंश की एक अन्य लोकप्रिय शासक थीं। वह राजा संग्राम शाह की पुत्रवधू एवं दलपति शाह की पत्नी थीं। उन्होंने बड़ी बहादुरी से मुगलों से लोहा लेते हुए अपने दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। गोंड वंश पर इस प्रदर्शनी का शुभारंभ प्रमुख सचिव संस्कृति एवं पर्यटन शिव शेखर शुक्ला ने किया। प्रदर्शनी 16 जुलाई तक खुली रहेगी। परिक्रमा के लिए भोपाल से मैं संजीव शर्मा।
नाउ इट्स टाइम फॉर आजादी का सफर।
ऑन द 10th ऑफ जुलाई 1806 द वेल्लोर रेवोल्यूशन स्टार्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश राज। इट वॉज द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ अ लार्ज स्केल एंड वायलेंट अपराइजिंग बाई इंडियन सीपॉयज अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी।
After Tipu Sultan was killed on May the 4th, 1799, during the siege of Srirangapatnam, the British troops took over the kingdom of Mysore. The British handed Mysore over to the Wodeyars, the former rulers of Mysore, and Tipu's children and their families were exiled to Vellore. However, this strategy soon came back to haunt them.
Tipu's children, their families, and innumerable servants formed a community of Mysoreans in exile, which numbered up to 3,000 and split over a considerable area around Vellore. Tipu's family soon began conspiring to avenge the death of their father and leader.
On November the 14th, 1805, 6 years after the bloody battle at Srirangapatnam, an order was issued by J.F. Craddock, Commander-in-Chief of the British troops, detailing the new military dress code. According to the order, the sepoys had to dress in a uniform and shave their facial hair, and were forced to wear a leather turban that had a cockade made from a cow hide. Though the order was passed to establish uniformity, the Hindu sepoys objected to wearing leather headgear.
Manida, manida, ini vidigal sivandal ulagam vidiyum. Vidiyil valiyum udiram murudum iniyum saridam eludum. Asayum kodigal uyarum uyarum nilavin mudugai urasum.
When 21 sepoys from the 2nd Battalion, 4th Regiment, expressed their resentment, they were subjected to corporal punishment and faced public lashing at Fort St. George in Madras. On the morning of the 10th of July 1806, the sepoys attacked Vellore Fort. A massacre followed, in which more than 100 British soldiers were killed, many of them shot while they slept.
The British flag was lowered by the sepoys, and Tipu's flag, given to them by Tipu's fourth son, Moizuddin, was hoisted. When a British cavalry regiment from Arcot reached the fort, it was already in possession of the activists. Soon, though most of them were killed by the British forces, and the rebellion was crushed.
Though the Vellore Mutiny is often overshadowed by the events of 1857, its effects were felt in Britain. The officers deployed at the fort were questioned about their intentions of introducing the changes that resulted in the uprising. We also remember independence activist Rehman Khan. A resident of Satara, Maharashtra, Khan was initially in the English East India Company Army, but left it to join the struggle for freedom from foreign rule during the uprising of 1857. He fought the British on several occasions in Satara until he was caught by the company troops in the thick of a combat.
Khan was put on trial for desertion and mutiny and sentenced to be transported for life with hard labor and irons. Rehman Khan died in custody on the 10th of July 1859 in the Andaman Islands.
Time for business news now. India's benchmark indices fell nearly half a cent after touching their record highs in today's early trade. The Sensex plunged 427 points to close at 79,925, while Nifty fell 109 points to settle at 24,324. In the global crude market, Brent crude is trading at $84.74 per barrel. WTI crude is trading at $81.58 per barrel when reports last came in. In the global commodity exchange for 5th of August contract, gold is trading at 72,729 rupees per 10 grams, while silver is trading at 93,395 rupees per kg when reports last came in. And what's the buzz from the world of sports, Akarshita?
जी, तो श्रोताओं अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल. विंबलडन में सेंटर कोर्ट पर कल खेले गए पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मशहूर रूसी टेनिस खिलाड़ी डेनिल मेदवेदेव ने विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर को हरा दिया. इसके साथ ही पांचवी वरीयता प्राप्त मेदवेदेव लगातार दूसरे वर्ष इस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचने में सफल रहे हैं. शुक्रवार को सेमीफाइनल में उनका मुकाबला विश्व के तीसरे नंबर के खिलाड़ी स्पेन के कार्लोस अल्कारेज से होगा. वहीं महिलाओं के एकल मुकाबले में क्वार्टर फाइनल में कल क्रोएशिया की डोना वेकिक ने न्यूजीलैंड की लुलूसुन को मात दी. इसके साथ ही वेकिक विंबलडन में इस पड़ाव तक पहुंचने वाली क्रोएशिया की दूसरी खिलाड़ी बन गई हैं. कल सेमीफाइनल में उनका सामना विश्व की सातवें नंबर के खिलाड़ी इटली की जैस्मिन पावालिनी से होगा.
And in the European Football Championship Euro 2024, Spain has defeated France in the important semi-final match played last night at Allianz Arena in Munich, Germany. In the second semi-final match, Netherlands will face England at BVB Stadium, Dortmund in Germany tonight. The final match will be played between Spain and winner of the second semi-final on Monday.
और श्रोताओं अब समय हो चला है उन हस्तियों को याद करने का जिन्होंने आज के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा या फिर आज के दिन दुनिया में कदम रखा. आज प्रसिद्ध अभिनेत्री एवं रंगमंच कलाकार जोहरा सहगल की पुण्यतिथि है. इनका मूल नाम साहिबजादी जोहरा बेगम मुमताज उल्ला खान है. थिएटर को अपना पहला प्यार मानने वाली जोहरा ने पृथ्वीराज कपूर के पृथ्वी थिएटर में करीब 14 साल तक काम किया. इस दौरान उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया जिनमें हम दिल दे चुके सनम, बेंड इट लाइक बेकहम और चीनी कम जैसी फिल्में शामिल हैं. तंदूरी नाइट्स को उनका श्रेष्ठ टीवी धारावाहिक माना जाता है और उल्लेखनीय फिल्मों में भाजी ऑन द बीच, दिल से ख्वाहिश, साया वीरजारा, चिकन टिक्का मसाला, मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस, चीनी कम सांवरियां शामिल है. इसके अलावा वे ऐसी पहली भारतीय हैं जिसने सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय मंच का अनुभव किया. उन्होंने 1960 के दशक के मध्य में रुडयार्ड किपलिंग की द रेस्क्यू ऑफ ब्लू प्लेस में काम किया. जोहरा सहगल को 1998 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2010 में पद्म विभूषण से नवाजा जा चुका है. आइए सुनते हैं फिल्म हम दिल दे चुके सनम से उनका ये डायलॉग.
रोशनी तो प्रेमियों के अंदर होती है बेटा.
आपको कैसे पता दादी?
मुझे प्यार ने बताया. प्रेम अपने रंग में सबको रंग लेता है. इस रंग से कोई नहीं बचता.
दादी क्या आपने लव मैरिज की थी?
नहीं, मैरिज पहले लव बाद में. अरे मैं तो 14 बरस की थी जब मेरी शादी हुई. एक दिन मैं छत पर बैठी कंघी कर रही थी, तुम्हारे दादाजी सामने पतंग उड़ा रहे थे. छत से उनका पाँव फिसला और वो छत से गिर गए. मैं भागी, देखा तो वो छज्जा पकड़ कर लटके हुए. मैंने हाथ बढ़ाया, जैसे मेरा हाथ उनके हाथ में आया मेरे अंदर तो जैसे बिजली सी कौंध गई हो. फिर आंखें मिली, प्यार हो गया. उस दिन उन्होंने पहली बार मुझे चूमा. नच पगली, चुभने से माँ थोड़ा ही बनती है.
That was Zohra Sehgal in her inimitable style. Today we are also remembering Asad Bhopali on his death anniversary, a very famous lyricist of Hindi cinema. In fact, Gulzar ne bahut zyada unke contributions ko numaya kiya tha in the encyclopedia that he compiled. And in 1949, Asad Bhopali was first spotted by the Fazli brothers, a film producer duo from Bombay, which is now Mumbai. Following the partition of India, Arzu Lakhnavi, the lyricist of their film Dunya, migrated to the newly created country of Pakistan. By this time, only two of the film songs had been written. Fazli brothers were looking for new lyricist. Businessman Sugam Kapadia, who owned a few cinema theatres in Bhopal, told them that there were many good poets in Bhopal and suggested that they attend a mushaira there. The Fazli brothers agreed and Kapadia organized a mushaira at his Bhopal talkies on 5th May 1949. Impressed by Asad Bhopali's performance, the producers invited him to Bombay. At the age of 28, Asad Bhopali travelled to Bombay on 18th May 1949 to become a lyricist in the Hindi film industry. And Asad Bhopali wrote two songs for Fazli brothers, Dunya, Rona Hai To Chupke Chupke, which was sung by Muhammad Rafi, and Arman Lute Dil Tur Gaya, which was sung by Suraiya. The next year, he wrote songs for a couple of films. These songs were sung by Lata Mangeshkar, Shamshad Begum, and he also went on to work with big directors like B.R. Chopra.
जी हाँ, आज हिंदी सिनेमा के गीतकार और शायर असद भोपाली की जयंती है. उन्हें ऐसे गीतकारों में शुमार किया जाता है जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में 40 साल तक का लंबा संघर्ष किया. उनका वास्तविक नाम असदुल्ला खां था. असद भोपाली के लोकप्रिय गीत हैं दिल दीवाना बिन सजना के मानिना, कबूतर जा जा जा, हम तुमसे जुदा होकर, दिल का सोना साज, और उनकी प्रमुख फिल्में हैं दुनिया, अफसाना, बरसात, आया तूफान, मैंने प्यार किया. उन्हें फिल्म मैंने प्यार किया के लिए लिखे गीत कबूतर जा 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 के लिए प्रतिष्ठित फिल्म फेयर पुरस्कार मिला. आइए सुनते हैं उनका ये गीत.
दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना, ये पगला है समझाने से समझे ना. ठक ठक बोले इतूत डोले.
Asad Bhopali went on to work with several noted music directors. He wrote the popular song from Parasmani, Wo Jab Yaad Aaye Bahut Yaad Aaye. That was for Lakshmikant Pyarelal's first release film Parasmani. He wrote a large number of film songs composed by Usha Khanna as well. From 1949 to 1990, he wrote about 400 songs for over 100 films. However, he was not as successful as top lyricists such as Majroo Sultanpuri, Sahil Ludhianvi, Janisar Akhtar and Rajendra Krishan. Many of the films he wrote for were low-grade films and he used to get only a few songs in high-end films, unlike other established lyricists. Bhopali was one of the lyricists who wrote songs for the 1989 musical hit, as you said, Maine Pyar Kiya. Shortly after, he suffered from a severe paralytic stroke. Lekin unka ek aur bahut hi famous gana hai, Hasta Hua Noorani Chehra. Let's listen to that.
दिल रुबा
आज क्रिकेटर सुनील गावस्कर का जन्मदिन है. लिटिल मास्टर के नाम से प्रसिद्ध सुनील गावस्कर को क्रिकेट के महानतम बल्लेबाजों में शुमार किया जाता है. इनका पूरा नाम सुनील मनोहर गावस्कर है. ये सिर्फ एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने एक सिंगल वर्ष में 1000 से ज्यादा रन बनाए हैं और ये जादू उन्होंने 4 बार करके दिखाया है. सुनील गावस्कर ने अपने समय में कई सारे रिकॉर्ड बनाए और पुराने रिकॉर्डों को तोड़ा. 34 शतक लगाकर उन्होंने सर डॉन ब्रेडमैन के रिकॉर्ड को तोड़ा था और 1971 के टूर के लिए उन्हें वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम के लिए चुना गया था.
Today we are also remembering Rai Bahadur Sir Ganga Ram today on his death anniversary, a civil engineer and architect whose contributions were immense. He received the title of Rai Bahadur in 1903 and was appointed a companion of the Order of the Indian Empire on 26 June 1903 for his services at the Delhi Darbar. And now the time is saying that we have to wrap up our show, Akarshita.
And Shrita, now time has come to take permission to leave. So Akarshita Singh and Saira, please give permission to end the program here.
नमस्कार।